Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
आप लोगों की संख्या ज्यादा है, जोर से गाइए। हरि बोल।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरि बोल। जय रुक्मिणी द्वारपति।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Sabhi gaiye.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Madhav Radha, Madhav Radhe Jaya. Jaya Radha, Madhav Radha, Madhav Radhe. Go to Bali. Rukmini Dwadadisha Rukmani Dwadadisha Rukmini Dwadadisha Rukmani Dwadadisha. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Jagannath Baladev Subhadra Jaya Subhadra Jaya Jaya Jagannath Jagannath Baladev Subhadra Jaya Jaya Jagannath Bole. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada
जय जय प्रभुपाद जय नीता गौरा हरि बोल हरि बोल नीता गौरा हरि बोल नीता गौर हरि हरि
श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की पंच तत्व गौर निताय की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की पदा पावन श्रील प्रभुपाद की नेताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। तो आज के पहले लफीस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम आज भगवद गीता के कुछ छह श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके पास भगवद गीता है? सबके पास है? घर पर नहीं, यहाँ पर। हम यहाँ पर कितने लोगों के पास है? ये जो इस्कॉन है, ये एक इंस्टीट्यूट है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड एंड फॉर इंस्टीट्यूट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। तो इंस्टीट्यूट के अंदर जब हम जाते हैं कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने साथ कुछ बुक्स ले जानी चाहिए। ले जाते हैं कि नहीं आपके बच्चे स्कूल में ले जाते हैं? तो वैसे ही हमको भी कुछ बुक्स लेके आनी चाहिए। कौन सी बुक लानी चाहिए? हाँ, भगवद गीता। साथ में एक नोट कॉपी होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगे। होता है ना क्लास में जाते हैं तो, अदरवाइज आएंगे और जाएंगे है ना। बोलेंगे प्रभु जी सभी का है, आना है और जाना है, तो वैसे ही चलता रहेगा। वो अलग बात है कि हम खाली प्रसाद के लिए आए या हम किसी और चीज के लिए आए। अगर हम कृष्ण प्रेम के चाहते हैं, अपने जीवन में कृष्ण चरणों में प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको उसको सीरियसली लेना चाहिए है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? बुक्स और एक नोट कॉपी। तो आज हम छह श्लोकों पर चर्चा करेंगे। कौन से छह श्लोक कोई बता सकते हैं? लास्ट क्लास कहां तक हमने करी है वो बता सकते हैं? सेकेंड चैप्टर गीता का सार हमने कौन सा श्लोक किया था लास्ट टाइम, लास्ट संडे? हाँ जी, हाँ 65 एंड 66 तो आज हम उसके आगे से 67 श्लोक से 72 श्लोक तक जो है पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग प्रयास करेगा पीछे बोलने का। 67 श्लोक को हम पहले संस्कृत में उच्चारण करेंगे और उसके बाद फिर अनुवाद पढ़ेंगे 67 से 72 तक, और फिर उसी के बारे में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोहराइए पीछे। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन अनुविध्यते ततः अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंभसि। इंद्रणाम ही चरताम, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो अनुविध्यते तत अस्त हरिति प्रज्ञाम वायु नवाम इव अंभसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन अनुविध्यते तत अस्य हरति प्रज्ञाम वायुं नवाम इव आम्भसि। लास्ट टाइम बोलेंगे, इस बार प्रयास करिएगा सभी लोग बोलने का। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन अनुविध्यते तत अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नवाम इव आम्भसि। अब इसका अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। मानते हैं इस बात को? समझा सभी ने? ध्यान पूर्वक सुनिए। तात्पर्य लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वो भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की वही सही एवं सरल विधि है। कौन सी विधि है? कृष्ण, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है सभी लोगों को, कृष्ण भावना अमृत, तो इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अभी हम ये सारे के सारे 66 से 72 श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अतः इसमें सब में यही बात हुई है, जो कि हमारा मन निरंतर दूसरी इंद्रियों में लगा रहता है, दूसरी चीजों के प्रति आकर्षित रहता है। 68 श्लोक में बता रहे हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरक्षक मुनि के लिए रात्रि के समान है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। श्लोक में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हमारे साथ में भगवान का मंगलाचरण दोहराइए, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं करामयं ददाते सद्धकांतिकं। वंदेहं श्री गुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंच कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आपको समझ में आया कि इन सारे 6 श्लोकों के अंदर हमने क्या चर्चा करी? बता सकता है कोई? इसमें हमने चर्चा करी कि किस प्रकार हमारी इंद्रियां हमको अलग अलग विभिन्न प्रकार की भौतिक इच्छाओं की तरफ खींचती रहती है, लेकिन जो है हमारे पास ये मन, अगर हम कृष्ण चरणों में इसको लगा दें तो फिर क्या होगा, हम इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों ने इसका जवाब दिया कि एक यहां पर जो क्या चीज है हमको बचा सकती है, कृष्ण भावना अमृत। आप जानते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? इस्कॉन में बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बताना चाहेगा कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब? आप लोग लगातार आ रहे हैं यहां पर काफी दिनों से, कृष्ण प्रेम के बारे में सुनते हैं। हाँ माता जी बताइए। माइक होगा प्रभु जी? आप रहिए, बताएंगे और लोग भी उत्तर देंगे। हाँ बताइए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही भाई। तो आप में से और कोई बताना चाहते हैं? माताजी प्रयास कर रही हैं बताने का। आप लोग भी सोच के रखिए, आपके पास माइक आएगा और आपको जवाब देना है ना? कोई क्विज कॉन्टेस्ट नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे, कोई आपको गोली भी नहीं मारेगा। सिर्फ समझिए कि कृष्ण भावना अमृत होने का क्या अर्थ है, कृष्ण कॉन्शियस होने का क्या अर्थ है। बताइए माता जी क्या बोल रहे हैं। माता जी ने जवाब दिया कृष्णमयी चेतना। और कोई बताना चाहते हैं प्रभु जी इसमें से? हाँ प्रभु जी बताइए। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? माइक आप जोर से बोलिए। सुनाई दे जी ने बहुत लंबा एक उत्तर दिया कि कृष्ण भावना अमृत होने का क्या तरीका है। शास्त्र में विवरण है, हमें इस तरह से 21,000 बार ये कार्य करेंगे तो हम कृष्ण भावना अमृत हो सकते हैं, ये प्रोसीजर है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस होने का क्या मतलब है? हिंदुस्तानी होने का क्या मतलब है? जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस होने का मतलब है, उसका उत्तर सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस होने का मतलब है कि हम हर वक्त इस बात से कॉन्शियस रहें कि कृष्ण हमको देख रहे हैं। लोग बोलते हैं हमने तो भगवान भगवान के दर्शन ही नहीं किए प्रभु जी। आपने किए भगवान के दर्शन? हमने तो कभी नहीं किए प्रभु जी, है ना? ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना मंदिर के भक्त जब जाते हैं, आपने भगवान के दर्शन किए? आप बोलते हैं भगवान है। तो कृष्ण कॉन्शियस होने का मतलब है इस चीज का हमेशा ज्ञान रहे कि कृष्ण हर वक्त हमको देख रहे हैं। ऐसी एक बार एक कथा आती है कि एक दो शिष्य थे, है ना, और दोनों शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरु जी हमको आपसे दीक्षा प्राप्त करनी है। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है, अगर तुम कृष्ण भावना भवित हो तो मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो कहते हैं कि ये लोग दोनों को एक एक एप्पल सेब देते हैं, कहते हैं इसको तब खाना जिस जगह तुम्हें कोई ना देख रहा हो, है ना। तो दोनों जाते हैं, एक जाता है बड़ा इंटेलिजेंट होता है, दौड़ता हुआ जाता है, सारे लोगों को बोलता है मेरे कमरे में कोई मत आना, लॉक कर लेता है, लाइट ऑफ कर देता है, इस टाइम मुझे कोई नहीं देख रहा, सेब खा जाता है फटाफट, है ना। और फिर लौट के आता है, कहता है गुरु जी मैंने सेब खा लिया, गुरु जी मैंने सेब खा लिया। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा ठीक है, वहां बैठ जाओ और जप करो। तो जप करने बैठ जाता है। तो उसके बाद दूसरा जो भक्त होता है वो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा करता हूं जंगल की तरफ चला जाता हूं जहां मुझे कोई नहीं देख रहा हो। तो जंगल में जाता है और फिर छुप के जब उस सेब को खाने का प्रयास करता है तो उसकी नजर जाती है ऊपर और देखता है चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष है, पेड़ ही पेड़ है, और सारे पेड़, क्योंकि पेड़ भी जीवित होता है ना, वो ग्रो करता है, उसके अंदर आत्मा है, कहते ये मुझको देख रहा है। तो ऐसी जगह जाता है दौड़ता हुआ समुद्र के किनारे जहां मुझे कोई ना देखे, पेड़ों से भी दूर। तो वहां जाता है तो क्या देखता है कि चंद्रमा उसको देख रहा है, अंधेरी में चंद्रमा उसको देख रहा है। और फिर जब सुबह हो जाती है तो फिर क्या, सूर्य आ जाता है, तो सूरज उसको देख रहा है ना। भगवान कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र मेरे नेत्र के तुल्य हैं। तो 24 आवर्स भगवान हमको देख रहे हैं। वो इस बात को समझ जाता है और 4-5 दिन प्रयास करने के बाद रोता हुआ अपने गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी मुझको दीक्षा इस जन्म में तो प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि मैं आपका पहला इंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं कर पाया कि ऐसी जगह जाके सेब को खाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। जब वापिस आते हैं तो गुरु जी कहते हैं ठीक है, आज से तुम्हारा नाम हुआ कृष्णदास। क्यों? क्योंकि तुम ये चीज जान गए हो कि कृष्ण हर जगह है। कृष्ण भावना भवित होने का ये अर्थ है। ये अर्थ नहीं कि हमने कंठी माला डाल ली और हम सिर्फ 2 घंटे सुबह हरे कृष्ण जाप करते हैं और बाकी के 12 घंटे और बाकी के 22 घंटे हम क्या करते हैं, भौतिक इच्छाओं के प्रति अपनी सारी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं, मार्केट में घूमने भी जाते हैं, मॉल्स भी बन रहे हैं, और फिर फ्रेंड सर्कल सोशल लाइफ भी है। तो ये सब जरूरी नहीं है। अगर आप ये करते भी हैं लेकिन उस समय भी इस बात से आप कॉन्शियस रहें कि कृष्ण आपको देख रहे हैं, तब हम समझ पाएंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस का। तो आज का जो हमारा ये श्लोक है इसको समझने के लिए बताना जरूरी था कि हम सदा कृष्ण कॉन्शियस रहें। और इसमें बताया गया है कि हमारा शरीर, सबसे ज्यादा हमारे शरीर में ताकतवर क्या चीज है, एनीबडी फ्रॉम हियर, कोई बता सकते हैं सबसे ज्यादा ताकतवर हमारे शरीर में क्या है? हमारी बाजू, हमारे पैर, हमारा मस्तिष्क, क्या चीज सबसे ज्यादा ताकतवर है? हाँ जी, मन है ना। मन के हारे हार है और मन के जीते, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत पजीत। मन से ही राम को मिलाया जा सकता है और मन से ही हमारी फजीयत होती है। सब लोग हम पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हम भौतिक संसार में फंस जाते हैं। तो ये मन और जो इंद्रियां हैं, ये हमारी सबसे ताकतवर है। इंद्रियां भागती हैं, है ना। हम कहते नहीं प्रभु जी, हम इस्कॉन में आ गए, अब हम ये सब खाना छोड़ दिया है हमने। लेकिन किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, शादी है और वहां पर बहुत बढ़िया भोग, बिना भोग का खाना बना हुआ है, तो हम क्या कहते हैं? अरे वाह, तो मटर पनीर मिल गया, है ना, तो हम खा लेते हैं, है ना। चाय पीने की इच्छा नहीं होती, प्रभु जी हम प्रयास करते हैं ना पिए ना पिए ना पिए, लेकिन सिर में दर्द हो रहा था, इंद्रिय ने बोला पी ले पी ले, तो मैंने फिर पी लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ। तो इंद्रियां इतनी ताकतवर है, हमको खींच के ले जाएंगे। हम गोलगप्पे की तरफ नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, चल देख ही लेते हैं क्या जा रहा है, देख लेते हैं, और फिर वो हमको खींच लेते हैं, और फिर हम धीरे धीरे इस अंधकूप में वापस बंधते चले जाते हैं, है ना। तो इंद्रियां, ये बताया गया है, ये इंद्रियां सर्प के समान है। कैसी है? सर्प के समान, सांप के जैसी है। जो सपेरा देखा है आप लोगों ने बचपन में, देखा होगा, अभी भी होते हैं सपेरे। सपेरा क्या करता है? एक बीन लेता है और उससे काफी सारे सांप होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है, है ना, बीन बजाता है और फिर सारे सांप कंट्रोल में आ जाते हैं। तो वो जो सपेरे की बीन है, और पता है आपको, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके बीन बजाने की ताकत खत्म हो जाती है, तब वही सांप उसको एक बार डस लेते हैं, और फिर वो उन्हीं सांपों के द्वारा मारा जाता है जिनको उसने पूरा जीवन पाल पोस के बड़ा किया। ऐसे ही हमारे शरीर में दी सेंसेस आर लाइक सर्पेंट्स, ये जो इंद्रियां हैं ये सर्प के समान है। प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बहुत जोर से के बोलते हैं कि हमें इंद्रियों को नहीं सुनना, वरना क्या बन जाएंगे हम? इंद्रियों का एक नाम है गौ। क्या नाम है? गौ। और हम बन जाएंगे गौदास, है ना। लेकिन आपने सुना होगा हमें क्या बनना चाहिए? गौ स्वामी। आपने देखा है ना, महाराज लोगों के नाम होते हैं दिस एंड दिस स्वामी, गोस्वामी। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है। वो कोई एक्सटर्नल टाइटल या क्वालिफिकेशन के लिए एग्जाम पास करके नहीं आए हैं कि मैंने ये एग्जाम में क्वेश्चंस याद किए, पास हो गया तो मैं गोस्वामी हो गया, या मैंने गोस्वामी परिवार में जन्म लिया तो मैं गोस्वामी हो गया। गोस्वामी का मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर काबू किया है और उसका मन सदा कृष्ण की तरफ चलता है, है ना। और देखिए, ये जो इंद्रियां हमको भगा के ले जाने का प्रयास करेंगी, लेकिन हमको, हम चाहें कि हम इस चीज को बंद कर दें तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे ताकतवर, आप लोगों का निर्णय है कि ये सबसे ताकतवर है जो कि हमसे भौतिक कार्य करवाती है। तो क्या करें? तो प्रभुपाद जी जवाब देते हैं कि इंद्रियों को खत्म तो नहीं कर सकते, क्या करें? डाइवर्ट कर सकते हैं, डोवटेल इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको कृष्ण भावना मवित की तरफ मोड़ दो, है ना। क्या करना है? मोड़ना है कृष्ण भावना भवित की तरफ। जब हम मोड़ देंगे तो हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है आध्यात्मिक हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे प्रभु जी, आध्यात्मिक कैसे होगा? तो वही खाना बाहर के लोग भी खाते हैं, सामने हमारे होटल है रेडिसन, उसमें भी लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन वो बिना भगवान के भोग लगाए हुए खाना है। तो उसको खाएंगे तो क्या होगा? बंधन में बंधेंगे, निकलेंगे? हाँ जी, बंधेंगे। और अगर हम भगवान को ऑफर करके भोग लगाकर खाना खाएंगे तो निकलेंगे, बचेंगे? बच जाएंगे। तो बंधन से छूटना है या बंधन में बनना है? हाँ, तो क्या करना है? कोई भक्त भूखे थोड़ी रहते हैं, भक्त तो फीस्ट खाते हैं। आप भी अभी फीस्ट खाएंगे, संडे लव फीस्ट, फीस्ट मतलब फेस्टिवल हो रहा है, पार्टी हो रही है, खूब सारा प्रसाद है, तो भूखे थोड़ी है। क्या किया? बस उसने भगवान को जोड़ दिया है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, जोड़ना है भगवान को, है ना। पैरों का इस्तेमाल कहां करना है? बाकी लोग करते हैं डांस में जाकर, आरडीज बोलते हैं, डांस स्टूडियोज में जाते हैं, और आपको क्या करना है? रुक्मणी द्वारकाधीश के कीर्तन में आकर नृत्य करना है। तो वही टांगे जो आपको बंधन से मुक्त करेंगी, और जो लोग डांस में नाचेंगे उनकी बंधन में बांधेंगे। तो आपको क्या करना है? अपनी इंद्रियों को कृष्ण भावना भवित करना है। ऐसी एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था, मतलब वो अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, और उसके बाद फिर जब उनका दोबारा जन्म होता है तो भी फिर वो ब्राह्मण परिवार में आते हैं, और उनका नाम है बिल्लव मंगल ठाकुर। आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं बिल्लव मंगल ठाकुर के बारे में? दो चार लोग जानते हैं। बिल्लव मंगल ठाकुर जो है वो एक ऐसे संत हुए हैं जो कि अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, और उनके पुराने जन्म की करी हुई भक्ति के कारण उनको दोबारा एक ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है ना। कहते हैं कि अगर आपने पिछले जन्म में भक्ति करी 50 तक, तो इस जन्म में 51 से आपकी शुरुआत होगी, और अगर आपने पिछले जन्म में भौतिक कार्य किए 50 तक, तो इस जन्म में कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। जीरो और हीरो, आपके पास चॉइस है। तो फिर क्या हुआ, जब वो ब्राह्मण घर में उत्पन्न होते हैं, तो उनके पिताजी जो है वो श्री वैष्णव है, श्री संप्रदाय को मानते हैं, और उनके घर में रोज भागवत कथाओं की चर्चा होती है। आप देखिए, इस कथा से हम सीखेंगे कि हमारी इंद्रियां कितनी प्रबल हैं, जो भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति को निकाल के ले जाती हैं। ये नहीं कि अब भक्ति में जुड़ गए तो अब हम माला करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतकाल तक, अंतकाले चमामे विस्मरण मुक्त व कलेवरम, अंतकाल तक जब तक इस शरीर का त्याग ना हो जाए, तब तक ये भगवान की कृष्ण भावना भवित चलती रहे, है ना। क्योंकि क्या होता है, लोग सोचते हैं हमने 20 साल भक्ति कर लिया, अब छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, अब क्या है। ऐसा नहीं है। जब अंत में भगवान का स्मरण हो पाएगा, तभी आपको शरीर कौन सा मिलेगा? आध्यात्मिक शरीर। अन्यथा भौतिक बंधन में हमें वापिस आना पड़ेगा। कहते हैं ना, जन्म जन्म ऋषि तप कराई, अंतकाल राम कहे आवत नहीं। अंतकाल में राम कहने से आएंगे नहीं, तब आएंगे जब आपने पूरी लाइफ जीवन में शुरुआत से अंत तक कृष्ण स्मरण किया हो, अन्यथा नहीं आएंगे भगवान। तो ऐसे ही बिल्ल मंगल ठाकुर श्री वैष्णव थे, और फिर वो क्या करते थे, अपना बिजनेस संभालते थे, खेती का काम था उसका, सारा लेन देन संभालते थे। लेकिन उनकी पत्नी भी थी, पत्नी है, गृहस्थ जीवन है, और साथ में क्या है, कृष्ण भावना भवित भी है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनके एक मित्र थे, एसोसिएशन बोलते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, उनके मित्र थे, और वो उनको लेकर चले गए एक ऐसी जगह जहां पर एक स्त्री बहुत सुंदर गीत गा रही थी, और वो कृष्ण का ही गीत था। लोग बोलते हैं प्रभु जी हम दूसरी कथा में चले गए थे, वहां पर भी द्वारका में भी कहीं पर कथा हो रही थी, कोई बाबा जी आए हुए थे या कोई स्वामी जी थे, वो कीर्तन कर रहे थे, हम वो कीर्तन सुनने लगे। तो दूसरा कीर्तन और कृष्ण भावना भवित कीर्तन में फर्क है। हो सकता है वो व्यक्ति भी कृष्ण का नाम ले रहा हो, लेकिन जो परंपरागत शिष्य गुरु परंपरा में आकर कीर्तन होता है, उस कीर्तन की जो ताकत है वो बाकी जगह आपको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि बताते हैं, दूध देखने में समांतर लगता है, लेकिन एक दूध जिसमें विष, जिसमें सर्प ने मुंह डाला है, वो विषैला होता है, है ना। तो जो गुरु परंपरा में व्यक्ति हैं, उन्हीं से हमको कृष्ण कथा और कीर्तन सुनना चाहिए, तभी हमारा प्यूरिफिकेशन हो पाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ऐसी स्त्री से जो गुरु परंपरा में नहीं थी, उससे कृष्ण कीर्तन सुना। अब वो कृष्ण कीर्तन, क्योंकि कृष्ण भक्त है, तो आसक्त होना शुरू हो गया। इतने आसक्त हो गए कि एक दिन उनके पिता का श्राद्ध था। श्राद्ध जानते हैं ना आप लोग, पितरों को श्राद्ध अर्पित किया जाता है, और उस श्राद्ध जैसे दिन अपने पिता के साथ रहने, जिस दिन उनके पिता ने जो उनको कृष्ण भक्ति दी, उस पिता का श्राद्ध करने की बजाय वो कहां जा रहे हैं, कृष्ण कीर्तन सुनने के लिए। लग तो रहा है कृष्ण कीर्तन, लेकिन आसक्ति है किससे, किससे, स्त्री से, और उस औरत से, उस स्त्री से वो अटैच हो गए। इतने अटैच हो गए कि उस रात्रि को बहुत तूफान था, इतना जोर का तूफान कि उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, बाहर वृक्ष गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है, इतनी मोटी धारा से एकदम बारिश हो रही है। और फिर उन्होंने क्या किया, वो एक नदी पड़ती थी उस स्त्री के घर जाने के लिए, और जब उस नदी को पार कर रहे थे, तो उनको लगा वाह भगवान का क्या अरेंजमेंट है। जब व्यक्ति गिर रहा होता है, तो उसको लगता है कि हाँ हाँ ये तो भगवान की इच्छा के अनुरूप हो रहा है। तो उनको एक एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा मिला, और उस टुकड़े को पकड़कर वो नदी को पार कर रहे हैं। और फिर जब उस स्त्री के घर जाते हैं, तो जोर जोर से दरवाजा ऐसे ठोक ठोक के बोलते हैं, अरे सुनो, खोलो खोलो, मैं आया हूं, मुझे कीर्तन सुनाओ, मुझे अपना भजन सुनाओ। लेकिन उसने गेट नहीं खोला, तो उन्होंने क्या किया, उसके घर के पीछे देखा एक लंबी सी रस्सी है, उस रस्सी को पकड़ा और उसके घर में अंदर पहुंच गए। वो बोले, ये क्या किया आपने, आप यहां कैसे आ गए, आज तो आपके पिता का श्राद्ध था। तो बोले, उस चीज को छोड़ो, मुझे तुम्हारे आवाज सुनने की आसक्ति यहां तक खींच लाई। ये कान है ना, हम वो खींच के ले जाते हैं, जहां पर बुराई हो रही हो किसी की, जहां पर बुरी बुरी बातें हो रही हो, वहां खींच लेती है, और जहां भजन हो रहा हो, कथा हो रहा हो, वहां पंडाल खाली रहते हैं, लोग आते नहीं है वहां पे, क्योंकि इंद्रियां खींच रही हैं, तो उसको भी खींच के ले जाती है वहां पे। और फिर वो क्या कहती है स्त्री, कहती है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने ध्यान से नहीं देखा कि तुम जिस नदी को क्रॉस करके आए हो, तैर करके आए हो, वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं, एक व्यक्ति की मृत शरीर है, डेड बॉडी है। तो ध्यान से देखता, अरे हाँ, और जिस रस्सी को चढ़कर तुम ऊपर आए, वो रस्सी नहीं, कौन है, सर्प है, सांप है, अगर तुम्हें ये सांप काट लेता तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। और जितनी आसक्ति तुमने अपने कानों से मेरे भजन को सुनने के लिए लगाई है, इतनी आसक्ति अगर तुम्हें कृष्ण के चरणों में होती, तो हो सकता है कि आज तुम्हें कृष्ण का दर्शन हो जाता। तो उसी पल उनके जीवन में, साधु का मतलब यही है, अपनी ज्ञान की तलवार से, वो लोगों को सुनने में बुरा लगता है लेकिन ज्ञान की तलवार से एक कट शॉट में उड़ा दे कि तुम अंधकार से बाहर निकलो और कहां जाओ, ज्ञान के रास्ते पे आ जाओ। तो वो फिर उनको समझ में आता है कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, और फिर वो वृंदावन आते हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि अपने एक मित्र के घर रुकते हैं, तो उस मित्र की जो स्त्री होती है उसकी तरफ जब उनकी नजर पड़ती है तो उनके मस्तिष्क में वही चल रही है वो स्त्री, उसका नाम क्या है, चिंतामणि। क्या नाम है? हाँ, चिंतामणि। आज देखें तो हम लोगों के जीवन में भी एक चिंतामणि है ना, चिंता अबाउट मनी, चिंतामणि है ना। तो हमें चिंतामणि की चिंता छोड़कर कृष्ण चिंतन करना चाहिए, है ना। तो वो चिंतामणि के चक्कर में क्या हुआ, उनको उस मित्र की स्त्री भी चिंतामणि नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा, अरे चिंतामणि तुम इस घर में कैसे? तो फिर वो बोले, उसके मित्र बोले, अरे तुमको गलती हो रही है, ये तो मेरी जो है अर्धांगिनी है, ये चिंतामणि नहीं है, अपने होश में आओ। तो वो अपनी आंखें खोलते हैं, कहते हैं इन नेत्रों के द्वारा ही मुझे बार बार जो क्या हो रहा है, कृष्ण चरणों में प्रीति प्राप्त नहीं हो रही है, तो कृपया करके माता आप मुझे अपने ये जो बालों में लगाने वाले क्या होते हैं पिन, वो मुझे दे दीजिए, उनसे मैं क्या करूंगा अपने नेत्रों को खत्म कर दूंगा। तो अपने पिन लेते हैं और दोनों नेत्रों को फोड़ डालते हैं कि अब ये चक्कर ही खत्म कर देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और फिर वो उसको फोड़ देते हैं। और फिर वृंदावन में आकर क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बस यही कीर्तन करते करते उनको क्या होता है, एक दिन कृष्ण आ जाते हैं। और जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण कहते हैं, तुमने इतने दिनों तक मेरा चिंतन किया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो रोने लगते हैं, उनके नेत्रों से आंसू निकलने लग जाते हैं, वो सोचते हैं मैं क्या मांगू। तो कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। तो कहते हैं ये लो, उनको नेत्र दे देते हैं कि लो तुम दर्शन करो। जब नेत्र दर्शन करते हैं, देखते हैं इतना सुंदर विग्रह भगवान का, अति सुंदर है ना, वेणुम क्वांतम अरविंद दलाताक्षम, पंखड़ियां जो है कमल की पंखड़ियों के समान नेत्र है, हाथों में बांसुरी है। भगवान को देखते हैं तो उनका पूरा शरीर रोमांच हो जाता है, उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं इतना सुंदर भगवान। और उस भगवान के जब दर्शन करते हैं तो भगवान कहते हैं अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहते हैं भगवान इन नेत्रों को आप दोबारा से बंद कर दो, खत्म कर दो। तो कहते हैं अरे लोग तो मुझसे पैसा मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, और तुम वापिस अंधे होना चाहते हो। कह रहे हाँ, क्योंकि अब इन नेत्रों ने एक बार आपका दर्शन कर लिया, अब और कुछ दर्शन करने की अभिलाषा नहीं है, और अब मैं पूरा जीवन अंत काल तक क्या करता रहूंगा, आपके नामों का उच्चारण करता रहूंगा। और फिर जो है उनको जो चिंतामणि है, उनको पता चलता है कि कृष्ण चेतना प्राप्त हो गई किसको, उस व्यक्ति को जो कि आसक्त था चिंतामणि के लिए। तो चिंतामणि आती है और वो कहती है कि आपने कृष्ण चेतना प्राप्त करिए, मुझको भी आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान आते हैं और कहते हैं चिंतामणि तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी धाम जा रही हो, क्योंकि तुम इस व्यक्ति जो है बिल्लव मंगल ठाकुर की शिक्षा गुरु हो, अगर तुमने इसको शिक्षा नहीं दी होती तो ये कृष्ण भावना भवित नहीं होता। तो हमको अपने जीवन में हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जितने भी पथ प्रदर्शक गुरु जो भी हैं, उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही हम कृष्ण भावना भवित में जुड़ पाते हैं, है ना। तो ये कृष्ण भावना भवित होना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए भौतिक जीवन में भी कुछ ना कुछ चीजों में हमको रोक टोक लगानी चाहिए। जैसे सिंगर्स होते हैं ना, गायक, फिल्म कलाकार गायक होते हैं, वो क्या नहीं खाते हैं, अचार नहीं खाते पूरा जीवन, कहते हैं हमारा थ्रोट वोकल कॉर्ड खराब हो जाएगा, ठंडा पानी नहीं पीते हैं, है ना। जीवन में कुछ नई चीजें जो डोंट्स है हमको नहीं करने चाहिए। पायलट है जो एरोप्लेन उड़ाता है, वो भी कभी क्या नहीं खाता, क्या नहीं पीता, अल्कोहल। अगर अल्कोहल पी के प्लेन उड़ाएगा तो क्या होगा, पहुंचेगा कभी, हाँ नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन का एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, क्या पी के, अल्कोहल। किस चीज का अल्कोहल, चिंतामणि, चिंता अबाउट मनी, हमेशा चिंता करते हैं सिर्फ पैसा पैसा पैसा, है ना, यही चीजें सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण चिंतन को अपने जीवन में बढ़ाएं, ऐसा नहीं कि हम पैसे के बारे में ना सोचें, उतना सोचें जितना कि हम कृष्ण सेवा में हमारी प्रगति हो। अगर कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में प्रगति नहीं हो रही तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में अगर कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ तो हमको कोई आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हमको अपने जीवन में नियंत्रण करने की जरूरत है। आप देखिए डायबिटीज होती है किसी व्यक्ति को तो उसमें डॉक्टर क्या बोलता है, ये डूज है और ये डोंट्स है। क्या डूज है, कि आपको घास के ऊपर चलना है, अपनी दवाइयां नियमित रूप से लेनी है, और डोंट्स क्या है, आपको मीठा नहीं खाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बोलते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से भक्त के जीवन में भी कुछ डूज और कुछ डोंट्स होने चाहिए। डूज होने चाहिए कि हमें एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की शरण लेनी है, और क्या करना है, सिर्फ प्रसाद का ही सेवन करना है, और क्या करना चाहिए, धाम में वास करना है। ये डूज है। और डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना चाहिए भक्त को? चार पाप नियम जो आप सुनते रहते हैं, पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए, हाँ, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, नशा पान नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। अगर ये चार चीजें नहीं करेंगे और ये चार चीजें करेंगे तो हमारा जीवन कृष्णमय हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कृष्णमय। लेकिन आप देखा जाए तो हम बाई नेचर कौन है, आनंदमयो भयासाद। वेदांत सूत्र बोलते हैं कि हमारा जीवन आनंद चाहता है, लेकिन हम लगे किसमें है, कंस्ट्रक्शन ब्रेकिंग। छोटे बच्चों को देखा, समुद्र के किनारे क्या करते हैं, एक महल बनाते हैं और फिर उसी को लात से तोड़ देते हैं, होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो ब्रेकिंग एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग, और उसमें उनको आनंद आ रहा होता है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे द्वारका में लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको तोड़ा, फिर एक नई बनाई, बोले देखा नया मकान बनाया है, नया महल बनाया है ना। ब्रेकिंग एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग, बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग, यही कर रहे हैं। लेकिन हम जीवन में आनंद की तलाश में है, लेकिन आनंद हमें प्राप्त नहीं होगा ब्रेकिंग एंड बिल्डिंग से, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरी हरी विफल जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। हरी हरी जन्म विफल गए, हमने जो हरि का नाम है वो पूरे 84 लाख योनियों में घूम घूम कर आए, कितनी बार मनुष्य शरीर प्राप्त किया लेकिन कभी हरि का भजन नहीं किया। मनुष्य शरीर पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, आपने मनुष्य शरीर पाकर भी अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या किया, जानिया सुनिया विष खाइनो, आपने जान पूछ कर विष खाया है। जो आदमी शराब पीता है ना, उसको लिखा होता है नीचे, अल्कोहल ड्रिंकिंग इज डेंजरस, स्मोकिंग इज इंजूरियस, लिपि पे लिखा होता है। ऐसे इस भौतिक संसार पे स्टैम्प्ड है, क्या, दिस प्लेस इज कॉल्ड एस, इस जगह को क्या बोलते हैं, दुख आलयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है, यहां पर सुख की तलाश मत करिए, क्योंकि अगर सुख की तलाश करेंगे तो जितना सुख ढूंढेंगे उतना हमको दुख के लिए तैयार हो जाना चाहिए, है ना। आप देखिए, एक बार एक कुत्ता था, वो क्या कर रहा था, उसके मुंह में एक रोटी थी और वो रोटी लेके दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते वो एक नदी के किनारे पहुंचा। उस नदी के किनारे पहुंचा तो देखता है कि उस परछाई में भी एक और कुत्ता है, एक डॉग है कुत्ता, और उसके मुंह में भी क्या है, रोटी है, और वो रोटी मेरी रोटी से बड़ी है, और इस कंपैरिजन में आ जाता है, ओहो मेरे इलाके में दूसरा कुत्ता और उसके हाथ में मुंह में बड़ी रोटी, तो मुझे इसकी रोटी चाहिए, है ना, इसकी रोटी चाहिए मुझको। और फिर क्या करता है, उसकी रोटी लेने के चक्कर में अपनी रोटी पानी में, तो ये रोटी क्या है, आनंद है ना। आत्मा जो है वो आनंदमय भैसाथ, हमेशा आनंद पूर्ण है, सच्चित आनंद का अंश है, और वो आत्मा जब इस भौतिक धरातल पर जो ये पानी रूपी छलावा रूपी जो संसार है इसमें जब सुख ढूंढती है कि नहीं नहीं इस चीज को छोड़ दो, भजन करने के लिए तो बहुत समय पड़ा है, पहले ये भौतिक संसार का भजन देखें कैसा है, भोजन कर लें इस संसार का, तो जब उस रोटी को पाने के चक्कर में हमारे जो ओरिजिनल रोटी है ये आत्मा, आनंदमय आत्मा, ये हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है, और फिर हम बाद में रोते हैं, है ना, कहते हैं राम नाम सत्य है, मरने के बाद राम का नाम क्या सत्य हुआ तो क्या हुआ, जीते जी सत्य होता तो फिर कुछ फायदा होता, तो इसलिए हमको जब तक हमारे शरीर में जीवन है तब तक हमको क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपकी जो इंद्रियां हैं उसके लिए एक श्लोक आता है भगवत गीता में जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, विषय विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिनाम रसो वर्जन रसो अपियस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। आपका क्या है कि अगर आप अपनी इंद्रियों को किसी कार्य को करने से रोकेंगे तो वो क्या होगा, कष्ट में हो जाएगी, एक ना एक दिन फिर वापस मन करेगा। हो सकता है 3 महीने तक बोले कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, और 3 महीने बाद आपको कोई बहुत बढ़िया डिश मिली, चलो एक बार खा लिया तो क्या हुआ, तो फिर वापिस उसी सर्कल पे आ जाते हैं, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है, होता है हमारे साथ। तो फिर क्या करना चाहिए, जब हमको असली टेस्ट प्राप्त होगा असली टेस्ट कौन सा? खीर का। जैसे कोई व्यक्ति रोज रोटी खा रहा है और फिर उसको जब खीर का टेस्ट प्राप्त हो जाएगा तो फिर क्या वो रोटी खाने की इच्छा करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि अब उसने सबसे उत्तम स्वाद चख लिया है। किसका? खीर का। रसो वर्जन रसो अपियस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। परम, परम जो है सबसे ट्रांसजेंडर चीज उसे प्राप्त किया है, और सबसे ट्रांसजेंडर चीज इस जीवन में बताते हैं कि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरि का नाम ही सर्वोपरि है। इसका जब हम नाम लेंगे तो फिर हमारे जीवन में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, है ना। और हम कैसे जाने कि हरे कृष्ण महामंत्र ही जो है वो जीवन में सर्वोपरि है। बहुत सारे भक्त यहाँ आ रहे हैं, कितने दिनों से द्वारका का ये प्रोग्राम चल रहा है, हर संडे यहाँ लग पीस प्रोग्राम होता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव कुछ कुछ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में, है ना, धीरे धीरे, है ना। जल्दी जल्दी क्या करना, अभी तो जीना बरसो, है ना, अभी जल्दी क्या करने की जरूरत है? क्यों चैंट करें अभी जल्दी जल्दी, अभी दो माला करते हैं प्रभु जी, क्या टेंशन है, धीरे धीरे 16 भी तो बहुत बड़ी उम्र पड़ी हुई है, ऐसा हमारे थॉट आता है। लेकिन किसी को सैलरी बढ़ानी हो तो अरे जल्दी कर, वो देख तुम्हारे पड़ोस वाला कितनी आगे निकल गया और तुम अभी तक वहीं की वहीं हो, ऐसा थॉट आता है हमारे जीवन में। तो हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण भजन करना चाहिए। तो कौन बताएगा? साधु, गुरु और शास्त्र, ये हमको बताते हैं कि जो जीवन में कृष्णमय होना सबसे जरूरी है, अन्यथा हमारी इंद्रियां भौतिक की तरफ खिंचती रहेंगी। एक कथा आती है बहुत सुंदर कि एक बार क्या हुआ, एक राज्य के राज्य में एक छोटा सा कुंवर था। कुंवर मतलब छोटा राजा, राजा का बेटा। वो क्या करता था कि एक बहुत बड़े से ग्राउंड में रोज खेलने जाता था, और किसके साथ खेलता था? जो भेड़ होती है ना, शीप्स, भेड़, उनके साथ खेलता था। और कुछ ग्रुप था बंदरों का, तो बहुत सारे बंदर इकट्ठे हो जाते थे। वो क्या करता था, सिपाहियों के साथ जाता था, बहुत बड़ा केले का एक ड्रम लेके, और केले फेंकता था, और बंदर करके कैच करते थे और खुश होते थे, वाह वाह राजा के साथ खेलने में मजा आता है। तो वो केले ऐसे फेंकता, वो जंप करते सर्कुलर मोशन में और फिर कैच करते और खा लेते, इस तरह से रोज होता। और जो शीप थी, भेड़, वो भी खेलती उनके साथ में, बंदरों को कंधे पे बिठा के, राजा को कंधे पे बिठा के घूमते खेलते। उनमें से एक भेड़ थी जो क्या करती थी, छुपके से राजा के महल में चली जाती थी, जहां पर रसोई होती है ना, जिसको कहते हैं जहां भोजन भोग बनता है, प्रसाद बनता है, वहां पर चली जाती किचन के अंदर, और फिर वहां पर जाकर डिस्टर्बेंस करते थे। तो जो ये बंदर थे, इनका एक मुखिया था। कौन था? मुखिया। तो मुखिया ने क्या बोला, सबसे बुजुर्ग बंदर जो था, कि देखो मुझे कुछ खतरा नजर आता है। क्या नजर आ रहा है? खतरा, कि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि ये जो भेड़ है जो अंदर घुसती है किचन में, ये जब जाकर वहां पर खाने को प्रदूषित करती है, वो क्या करेगा, जो वहां बनाने वाला ब्राह्मण है, महाजन, वो क्या करेगा, लकड़ी उठाएगा जलती हुई और इस भेड़ को मारेगा। जब मारेगा तो इसके शरीर पे क्या है, फर लगा हुआ है पूरा, तो आग पकड़ लेगी, और जब आग पकड़ लेगी तो ये भागती हुई जाएगी राजा के अस्तबल में, जहां पर घोड़े हैं, महंगे महंगे घोड़े राजा के, लड़ाई करने के लिए। और फिर वो जाकर वहां पर जब अपनी आग को बुझाने के लिए घास में उल्टी होगी, लेटेगी, ऐसे करेगी भेड़, तो पूरे स्तबल में, अस्तबल में आग लग जाएगी और सारे घोड़े जल जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे उनके। और फिर राजा पूछेगा वैद्य से कि भाई इतने महंगे घोड़े हैं, इनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो फिर वैद्य बोलेगा कि सिर्फ एक ही इलाज है, क्या? बंदर की चर्बी, बंदर की चर्बी निकालो और फिर इस घोड़े के छाले पे लगाओ तो घोड़ा ठीक हो जाएगा। तो घोड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि वो कीमती हैं, बंदरों को काटा जाएगा, मारा जाएगा। तो है ना, जाकर वही सारी बात, तो सारे बोलते हैं अरे अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे आप जाकर बोलो ना, प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र जीवन का सार है, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर क्या होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जीवन का सार हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसे करके हम लोगों को बोलते हैं। तो वो सारे के सारे बंदर भी बोले उस बुजुर्ग को, अरे आप तो बुजुर्ग हो ना, सठिया गए हो, 60 की उम्र हो, बोलते हैं ना सठिया जाता व्यक्ति, सठिया गए हो आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा नहीं होने वाला है, हमें तो इतना आनंद आता है, इतना केला खाते हैं, इतना आनंद करते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। प्रभु जी जरूरी थोड़ी है मंदिर ही सब कुछ होता है, सबसे प्रेम से व्यवहार करो, इतना आनंद है जीवन में, ये थोड़ी हरे कृष्ण ही करते रहो खाली, ऐसे लोग जवाब देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो वो भी सारे तर्क वितर्क कर रहे थे छोटे छोटे बंदर उस बड़े बुजुर्ग बंदर के साथ में। फिर क्या हुआ, बड़े बुजुर्ग बदन ने जो कहा था, बोला ठीक है आप लोग यहाँ रहना चाहते हो तो यहाँ रहिए, मैं कहाँ जाता हूँ, इस शहर को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता हूँ, और फिर वो उस जगह को छोड़कर चला जाता है। तो बाकी बंदर खेलते रहे, मजा आ रहा था, अनार कभी सेब खा रहे थे, कभी केले खा रहे थे। एक दिन वही हुआ, वो भेड़ अंदर घुसी और उस महाजन ने लकड़ी से मारा, शरीर में आग लगी और फिर अस्तबल में आग लगी। अस्तबल में आग लगने से घोड़े जल गए, घोड़ों के जलने से राजा ने किसको बुलाया, वैद्य को। वैद्य ने आके क्या कहा कि देखो बंदरों को काटो, उनकी चर्बी निकालो, उसी से घोड़े ठीक हो सकते हैं। सारे बंदरों को जाल में पकड़ा गया और उनको एक एक करके काटा गया और उनके शरीर की चर्बी घोड़ों में लगाया गया, महंगे घोड़ों को बचाया गया और फिर सारे बंदर मारे गए। जब वो कट रहे थे तब फिर क्या सोच रहे थे कि जो हमारा बुजुर्ग बंदर बोल रहा था वो सत्य बोल रहा था, क्योंकि उसने जीवन को देखा था। ऐसे ही साधु गुरु और शास्त्र जब बोल रहे हैं बार बार कि क्या करो, कृष्ण भावना भवित हो जाओ, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट बर्थ, अपने अगले जन्म का इंतजार मत करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद कहते थे कि डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट लाइफ, फिनिश दिस बिजनेस इन दिस लाइफ ओनली, दूसरे जीवन का इंतजार मत करिए, इस ही जीवन काल में अपने इस जन्म मृत्यु के चक्र को बंद कर दीजिए। क्या करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन क्या है कि हम अपने जो हमारी जीवात्मा है ना, अंदर जो जीवात्मा है जिसको बोलते हैं, वो जीवित है या मृत है? जीवात्मा जीवित है या मृत है? जीवित है ना। तो ये और जो ये शरीर है, जीवित है या मृत है? हाँ जी, मृत है। इस शरीर का एक और नाम है मरण धर्मा, इसका धर्म क्या है, मरना ही इसका धर्म है। लेकिन जो अंदर जीव है उसके लिए हमने अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी इसका मतलब हम सब कुछ छोड़ दें, सारे कार्य बंद कर दें, बस खाली यहां बैठ जाएं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान भी कह रहे हैं क्या, नियमित कुरु कर्मा, नियमित रूप से अपने कर्मों को करिए। अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का कार्य करिए, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कार्य करिए, वैश्य हैं तो वैश्य का, और अगर शूद्र हैं तो शूद्र का कार्य करिए। जो कार्य आपको दिया है वही कार्य करिए। लेकिन क्या करिए, मम अनुस्मरणम युद्ध चा मई अर्पितम मना बुद्धि, अपनी मन और बुद्धि मेरे शरण में कर तुम्हें क्या करना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करते हुए अपना कार्य करना चाहिए। कार चला रहे हैं, कार चलाते चलाते कुछ गाने गाते हैं ना, फिल्मी गाने गाते हैं, साथ में ये भी बोल सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो वही कार चलाना क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक, और पहले क्या था, भौतिक। तो बस छोटा सा ही डिफरेंस है। तो कार्य तो करना पड़ता है। इवन ये भी बताते हैं, ना ही सुप्त से सिंह से प्रवेशंती मुखे मृगा, एक मृग है और वो जाकर शेर के मुख में नहीं बैठता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसके जीवन में प्रारब्ध में अगर शेर के दिन में आज लिखा है कि आज इसको हिरण मिलेगा, तो ये तो फिक्स है कि आज हिरण उसको मिलेगा। लेकिन उसके लिए उसको कार्य करना पड़ेगा। जब वो कार्य करेगा तो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर लिखा है तो मिलना जरूरी है। ऐसे ही आपके जीवन में आप कार्य करिए, अगर लिखा है कि प्रगति होगी, आपको कुछ जीवन में सुख मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। लेकिन उसके पीछे भागने के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन को मत त्यागिए। हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप करेंगे और फिर अपना कार्य करते रहेंगे तो वो कार्य भी कैसा हो जाएगा, कृष्ण भावना भवित। एक कर्म करता है व्यक्ति और एक अकर्म करता है। कर्म का मतलब लोग बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है, अपना डेली कर्म करो। और एक अकर्म है ना, अकर्म का मतलब लोग सोचते हैं कर्म ना करना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। वो कर्म करो जिसमें आपको बंधन ना हो। जैसे एग्जाम्पल में एक सवाल पूछते हैं आपसे, एक बॉल को लेकर एक दीवार पे मारेंगे तो क्या होगा, हाँ जी, वापस आएगी। और एक लोहे की दीवार है उस पर एक मैग्नेट की बॉल है, मैग्नेट मतलब चुंबक की, उसको लेके मारेंगे तो क्या होगा, चिपक जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो ऐसे ही वो कर्म जो वापस आते हैं रिएक्शन के रूप में, उन कर्मों को करने से आप जीवन में बंधते हैं। और वो कर्म जो कि आपको बांधते नहीं है, उनको करने से आप मुक्त हो जाते हैं, इस कृष्ण भावना भवित कर्म होते हैं, उसको अकर्म कहते हैं, है ना। तो जैसे आपको बताया कि एक खाना खा रहा है बाहर का व्यक्ति, वो बंधन में बंध रहा है, उसकी बॉल वापिस आ रही है। और जो व्यक्ति भोग लगा के खा रहा है, प्रसाद खा रहा है, उसकी बॉल चिपक जाएगी, इस संसार से जाने के बाद में वापस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है कर्म है और अकर्म है। लोग अकर्म का मतलब समझते हैं कर्म नहीं करना, है ना। और एक बहुत छोटी सी फिलॉसफी से हम समझ सकते हैं, एक छोटी सी कृष्ण लीला है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, समय हो चुका है। कि एक बार जब वृंदावन में कृष्ण थे, तो क्या हुआ, गेम खेलते थे ना रोज, लीलाएं करते थे। तो एक लीला थी जिसके अंदर भगवान बन जाते थे लीडर पुलिस, और दो जो उनके ग्वाल बाल थे वो क्या बन जाते थे, चोर और सिपाही का खेल खेलते थे, गाय चुराते थे, कभी कुछ चीजें चुराते थे, और फिर कृष्ण से बोलते थे बताओ कौन चोर है, तो कृष्ण ढूंढते थे ये है। तो उन्हीं के बीच में एक बार क्या हुआ, एक राक्षस जो कंस भेजा करता था उसका नाम था व्योमासुर। क्या नाम था? व्योमासुर। वो भी आकर क्या बन गया, मित्र बनकर बीच में आ गया। और फिर उसने क्या करना शुरू किया, धीरे धीरे एक एक ग्वाल वाले को ही चुराना शुरू किया। आंखों पे पट्टी बांध के खेलते ना गेम, 1 2 3 ढूंढ के बताओ मैं कहाँ हूं, ऐसे खेल चल रहा है। वो पीछे से एक मित्र को उठाता था, ले जाके गुफा में डाल देता था, है ना, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर लगा देता था। तो ऐसे व्योमासुर था, खतरनाक। तो जानते हैं फिर बाद में क्या हुआ, जो ये जो बच्चे थे इन्होंने क्या किया, भगवान का स्मरण किया। क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर क्या हुआ, कृष्ण वहां आए, उन्होंने व्योमासुर को मार दिया और उस पत्थर को हटा दिया और सारे बच्चों को निकाल दिया। ये क्या भगवान कृष्ण ने। तो आप देखें ये व्योमासुर कौन है, ये व्योमासुर हमारी इंद्रियां है, हमारा मन है, जिसे आपने सबसे ताकतवर बताया। वो लगता है कैसा, मित्र जैसा, जैसे वो राक्षस मित्र बन के आया, लेकिन करता क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ में, हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें निकाल निकाल कर हमारे जीवन से ले जाता है, समय निकाल कर ले जाता है, खुशियां निकाल कर ले जाता है, और हम क्या सोचते रहते हैं, ये तो हमारा मित्र है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन हम अंधकार के गुफा में बंद होते जाते हैं और ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर भी लग जाता है। फिर हमको क्या करना चाहिए, जब हमारा मन इस प्रकार से हमको अंधकार में ले जाए क्या करना चाहिए, मम्मी बचा लो, पापा बचा लो, ये बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार से बोलेंगे तो क्या होगा, कौन आएंगे, गणेश जी कौन आएंगे, कौन आएंगे, तो आवाज नहीं आ रही है जोर से, मैं दो लोगों के लिए आएंगे बस, नहीं आएंगे, क्या कौन आएंगे, हाँ कृष्ण आएंगे, और फिर आकर क्या करेंगे, उस पत्थर को हटा देंगे, उस राक्षस मन को मार देंगे, और फिर हमारे सामने क्या आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया, हमारे सामने ज्ञान रूपी अग्नि से प्रकाश प्रकट हो जाएगा और हमको समझ में आएगा कि रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर में जो भक्त हैं उनका संग करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, रुक्मणी द्वारकाधीश की संडे लव फीस में जाना ही सबसे ज्यादा अच्छा है, वरना हम वापिस व्योमासुर की गुफाओं में कैद हो जाएंगे। कितने लोग बचना चाहते हैं, हाँ, तो जोर से बोलिए हरी बोल हरी बोल हरी बोल। और कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण तहां माया रे अधिकार, बोलते हैं ना, बैक टू गॉडहेड मैगजीन पे लिखा है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेना। एक बार एक छोटी सी और कथा सुना रहा हूं रोज उसके बाद, सॉरी। एक शिवानंद सरस्वती थे, जयपुर ऋषिकेश में रहते थे, और वहां पर एक जयपुर के राजा को पता चला कि शिवानंद सरस्वती जो ऋषिकेश में रहते हैं वो बहुत ज्यादा समाधि में जाते हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं समाधि अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो कैसे समाधि लेते हैं। तो एक दिन उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं आपकी समाधि देखना आना चाहता हूं। तो बोले ठीक है आप 16 फरवरी को आना इस नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर में अगले साल, तो मैं समाधि लूंगा आपके सामने। चले ठीक है। तो शिवानंद सरस्वती थे और फिर उनको देखने के लिए राजा जयपुर के आ जाए, तो आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो क्या कर रहे हैं, अपने बीड बैग में ऐसे उंगली डाली हुई है और क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो ऐसे जप कर रहे हैं। एक घंटा निकल गया, राजा खड़े रहे, अच्छा शायद अभी तैयारी कर रहे होंगे, स्टार्टर जैसे स्कूटर में मारते ना किक मारते हैं, पहले वो थोड़ा सा गर्म करते हैं स्कूटर को, तो शायद हो सकता है कुछ तैयारी कर रहे हैं। फिर एक घंटा निकल गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, उन्होंने देखा ही नहीं कि राजा आ चुका है, उनकी सेना आई हुई है, इतने सारे लोग हैं, सब बैठे हुए हैं और वो अपना ऊपर सीढ़ियों में आ रहे जा रहे, गार्डन में इधर उधर घूम रहे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब 5 घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने पूछा, अरे राजा आप आ गए, कह रहे हाँ मैं समाधि देखना चाहता था। बोले अरे मैं तो अभी समाधि से बाहर आया हूँ। समाधि आप कहां समाधि में थे? बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते वक्त ध्यान पूर्वक जप हम करते हैं तो वो सबसे बड़ी समाधि है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है अगर हमारा सारा का सारा ध्यान कृष्ण चरणों में केंद्रित है। अन्यथा क्या होगा, ऐसे नहीं हम जप कर रहे हैं हरे कृष्णा हेलो हेलो हरे कृष्णा, ऐसे वाला जप जो है वो करने से हमारी समाधि नहीं होती है। तो ये समाधि है, जो लोग बोलते हैं ज्ञान समाधि, ये समाधि वो समाधि, आकर्षित होते हैं समाधि वाले बाबा जी, सिद्ध बाबा जी। तो सबसे बड़ी सिद्धि है जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेना, तब आपकी इंद्रियां इन भौतिक जगत को छोड़कर कृष्ण चरणों में स्टेबल हो पाएंगी। हरे कृष्ण।
तो अगर आप जिस जिसने ताली नहीं बजाई है उसको हम प्रसाद नहीं दे रहे हैं
आज। बोल
देखिए जो ताली नहीं बजा रहे आज, वहां आज व्रत है उसका। और देखिए जरा कौन ताली नहीं बजा रहा है, हमारी माता जी नहीं बजा रही है।
पिक्चर क्लिक कर देना मेरे सामने
और
अपने फोन से नंबर दे
दीजिए। अब हाथ ऊपर करके ताली है। ओके सबको प्रसाद मिलेगा भाई, सबको प्रसाद मिलेगा भाई। इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, इतनी सारी स्टोरीज वन आफ्टर अनदर, मतलब ताली तो भाई बनती है कि नहीं? कितनी सारी तैयारी करके आते हैं भक्त और यू नो सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। वही कलयुग में क्या है ना, ज्यादा ज्यादा अगर हम फिलोसफी बनाते हैं, इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बस क्या बोले। लेकिन स्टोरीज हमको स्टोरीज अच्छी लगती है। तो प्रशांत मुकुंद प्रभु ने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाई हमें, भगवान की लीलाएं बताई, उनके लेसन बताए, तो ताली बनती है ना।
हरी बोल,
हरी बोल, थैंक यू प्रशांत मुकुंद प्रभु, इतना सच्चा एंड लिविंग प्रेजेंटेशन, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया एक के बाद एक, सो मेनी गुड एग्जाम्पल्स, एनोलॉजीज, स्टोरीज, पास्ट टाइम्स, लीलाएं और फिर उनसे टीचिंग्स। वेरी वेरी नाइस सवाल, मतलब वाकई में हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि प्रशांत को प्रभु सर ने सुना। तो हम चाहेंगे कि महीने में कम से कम इनकी एक हिंदी में और एक इंग्लिश में क्लास रखें, रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? हरी वो। तो ये लक्ष्मी को तो लाने की सेवा करते हैं, साथ में सरस्वती को भी लाने की सेवा करते हैं, हमें पता नहीं चाहिए डिपार्टमेंट के बारे में। तो थैंक यू प्रशांत मुकुंद प्रभु, अमेजिंग अमेजिंग प्रेजेंटेशन, वेरी वेरी ग्लैड, वेरी वेरी एनलिवनिंग एंड नाइस थिंग, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा प्रशांत मुकुंद प्रभु से आज श्रवण करके, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, तो उनका नाम है रमेश जी और सुनील महेश्वरी जी, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। तो IIM के ये प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में सेवा कर चुके हैं। हमारा जो मिड डे मील प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग करीब 5.5 से 6 लाख बच्चों को रोज प्रसाद खिलाते हैं, उसको और ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट, उसको और ज्यादा अच्छा बनाने में भी उनका बहुत बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन दो स्मॉल वार्ड से कि प्लीज यहाँ पर आए। और अभी इतनी गुआ से भी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, जो भगवान इनको बुद्धि दी है उसका बुद्धि का इस्तेमाल करके किस तरह से हम